भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। श्लोक क्रमांक 33। द्यौः तत् सटा उत्क्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पद अभिपीडिताः शैलाः समुत्पेतुः अमुष्य ब्रह्मसा तत तेजसा खम ककुभः नरेजिरे। द्यौत्सटोक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पदाभिपीडिता शैला समुत्पेतुरमुष्य रंहसा तत्तेजसाखं ककुभो नरेजिरे। द्यौतत्सटा उक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पदाभिपीडिता शैला समुत्पेतमुष्य रंहसा तत्तेजसाखं ककुभ्नरेजिरे। द्यौतत्सटा उक्षिप्त विमान संकुला प्रोत्सर्पत क्ष्मा च पदाभिपीडिता शैला समुत्पेतमुष्य रंहसा तत्तेजसाखं ककुभो नरेजिरे। माता जी देव बाह्य आकाश तत्सटा उनके बालों से उत्क्षिप्त बाहर फेंका हुआ विमान संकुला विमानों से पूरित प्रोत्सर्पत स्थान से सरक गया क्ष्मा पृथ्वी च भी पदाभिपीड़िता भगवान के चरण कमलों के गुरु भार से पीड़ित शैलाह पर्वत समुत्पेतुहु ऊपर उठ गया अमुष्य उस भगवान के रम्हसा असह्य बल से तत्तेजसा उसके तेज से खम आकाश ककुभह दसों दिशाएं नरे जिरे नहीं चमकी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। नरसिंह देव के सिर के बालों से वायु विमान बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में जा गिरे। भगवान के चरण कमलों के दाब से पृथ्वी अपनी स्थिति से चिटकती प्रतीत हुई और उनके असह्य बल से सारे पर्वत ऊपर उछल गए। भगवान के शारीरिक तेज के आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। तात्पर्य इस श्लोक से पता चलता है कि बहुत समय पहले आकाश में विमान उड़ा करते थे। श्रीमद् भागवत की रचना 5000 वर्ष पूर्व हुई और इस श्लोक के कथन से सिद्ध होता है कि उस समय उच्च लोकों में तथा अधोलोकों में भी अत्यंत विकसित सभ्यता विद्यमान थी। आधुनिक विज्ञानी तथा दार्शनिक मूर्तवश ये बताते हैं कि 3000 वर्ष पूर्व कोई सभ्यता न थी, किंतु इस श्लोक के कथन से ऐसे अटपटे निर्णय निरस्त हो जाते हैं। वैदिक सभ्यता लाखों वर्ष पूर्व विद्यमान थी, वह इस ब्रह्मांड की सृष्टि के समय से ही विद्यमान है और उससे सारी आधुनिक सुविधाएं प्राप्त थीं। हरे कृष्ण। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान नरसिंह देव अभी कुछ ही समय में हिरण्यकशिपु को समाप्त करने के पश्चात अब इस श्लोक में उनके तेज का वर्णन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके तेज से बाह्य आकाश तथा उच्च लोकों में वायुयान जा गिरे और उनके चरण कमलों के प्रभाव से पृथ्वी दब गई और भगवान के शारीरिक तेज से आकाश तथा समस्त दिशाओं का प्राकृतिक प्रकाश घट गया। अर्थात भगवान नरसिंहदेव का प्राकट्य और ये प्रसंग यहां श्री नरसिंहदेव जी के विग्रह के समक्ष हम लोग कर रहे हैं, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। यही प्रसंग आ रहा है और नरसिंहदेव ही प्रकट हुए ही हैं और कुछ समय के पश्चात उन्होंने हिरण्यकशिपु को समाप्त कर दिया और हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंहदेव के इस तेजस्वी रूप को देखकर भी उनके मन में तनिक संशय नहीं आया कि ये भगवान हो सकते हैं, क्योंकि अहंकारवश उसे इतना आत्मविश्वास था कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ही अजर अमर हूं। तो भगवान अपने संपूर्ण तेज का प्राकट्य करने पर भी हिरण्यकश्यपु के मन में यह विषय नहीं आया। तो इसलिए यहां पे वर्णन आ रहा है कि भगवान का तेज इतना प्रभावशाली है कि प्रकृति के सारे तत्व उसके अधीन विचलित होने लगे, उनके अंदर परिवर्तन देखा गया, पृथ्वी के अंदर परिवर्तन देखा गया, आकाश में परिवर्तन देखा गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये सभी भगवान के तेज के अधीन हैं और उनका प्रभाव इन सभी प्रकृति के तत्वों पर पड़ गया। तो इसलिए भगवान का तेज पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के ऊपर प्रभाव करता है, उसमें परिवर्तन लाता है, उसमें विविध प्रकार के विकार लाता है, लेकिन अहंकार के अंदर परिवर्तन लाना बड़ा कठिन है। तो इसलिए भगवान स्वयं अपने तेज से भले प्रकृति के सभी तत्वों के अंदर परिवर्तन लाएं, लेकिन बद्ध जीवों के हृदय के अंदर जो भोक्तापन का अभिमान चिरकाल से चिपका हुआ है और जिस अभिमान के कारण प्रत्येक जीव को लगता है कि मैं संपूर्ण संसार का केंद्र हूं, तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो भगवान कहते हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इत्यादि के अंदर भूकंप और बवंडर इत्यादि में ला सकता हूं, लेकिन मन बुद्धि अहंकार का डिपार्टमेंट आपको दिए है, उसको वशीभूत करना, केंद्रित करना और अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त करना ये हमारा उत्तरदायित्व है। और इसलिए भगवान अपने प्रतिनिधि इस भौतिक जगत में श्री गुरु के माध्यम से हम सभी को ये आश्वासन देते हैं कि हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया कोरो ए दासे त्रिनापेखा अति हीन। तो इसलिए भगवान नरसिंहदेव इतने प्रभावशाली हैं कि उनके विग्रह को देखकर हम लोग कंपित हो जाते हैं, कोई कूटनीति के भाव से भी उनके सामने आएगा लेकिन उनके इस रूप को देखकर अवश्य उसके मन में विचार आएगा कि कैसे मुझे परिवर्तन करना चाहिए। जब इन विग्रहों को लेके आ रहे थे दक्षिण भारत से, तब वो उस समय आपके ही मैगजीन में ये स्टोरी वर्णन है कि अलग अलग जो स्टेट का बाउंड्री जब क्रॉस करते थे तब टोल नाका पे जब वो लोग पूछते थे कि क्या लेके जा रहे हैं, तो फिर वो खोल के जब विग्रह दिखाते थे बोलते थे निकलो निकलो इनको लेके निकल जाओ। जिनको इस बात का ज्ञान नहीं आभास नहीं वो भी भगवान को देखकर घबरा जाते हैं। और यहां पर हिरण्यकश्यपु के अहंकार की इतनी चरम सीमा थी कि भगवान के संपूर्ण शत प्रतिशत वैभव को साक्षात निरीक्षण करने पर भी उसके हृदय में रंच मात्र परिवर्तन नहीं आया। तो इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गुरुजनों का सहायता लेते हैं। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, कि भगवान अपने संपूर्ण वैभव के साक्षात प्राकट्य से जो कार्य नहीं कर सकते वो कई बार अपने भक्तों के ऊपर निर्भर होकर उन भक्तों के माध्यम से उनकी कृपा का एक बिंदु मात्र अगर जीव को प्राप्त हुआ, कोरो एई दासे, और जीव के हृदय में ये इच्छा हुई कि मैं दास बनता हूं, दास बनने का प्रयास करता हूं, तृणापेक्षा अति हीना, और तृण से भी अधिक वो नम्र होने का जब विचार करे, संकल्प करे, तो वो वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत है। तो इसलिए यहां पर कहा गया है, सकल सहने बल दिया करो निज माने स्पृहा हीना। तब जाकर जब ये गुरुजनों की कृपा, भगवान की कृपा उनके माध्यम से हमारे हृदय के अंदर बूंद बूंद टपकती है, तब जाकर सहनशीलता बढ़ती है। तो कैसे समझ में आता है कि हम लोग वास्तव में नम्र हो रहे हैं? जब सहनशीलता बढ़ती है, सहन करने की शक्ति बढ़ती है, तब जाकर हमें समझ में आता है कि हाँ, मैं अपने विचारों के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार इस जगत के हर तत्व को घुमाने के विचार से चल रहा हूं, लेकिन ये जगत मेरे विचारों से, मेरी योजना से भिन्न अन्य किसी शक्ति और सत्ता के योजना अनुसार चल रहा है, इस बात की संपूर्ण स्वीकृति को ही नम्रता कहते हैं। इसलिए सकल सहने बल दिया करो, इसको सहन करने की शक्ति दीजिए, उसको बल दीजिए। निज माने स्पृहा हीना, तो तब जाकर हम इस मान सम्मान की भावना से हम मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि बद्ध जीव अहंकारवश ये विचार करता है कि मैं इतना श्रेष्ठ हूं, इतना महान हूं कि मैं जो योजना बनाऊं वो सफल होना ही चाहिए। और ऐसे अहंकार के साक्षात प्रतीक हैं हिरण्यकशिपु। तो इसलिए कई बार हिरण्यकशिपु के इस कथा को सुनते हुए हम लोगों के मन में यह विचार आता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं। कथा सुनते समय, खासकर जब भी मैं कथा सुनता हूं, तो तुरंत मन में यह विचार नहीं आता कि क्या मैं भी हिरण्यकशिपु जैसा तो नहीं हूं। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डिवोटी हैं, रोज नरसिंह आरती गाते हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी माला पहने हैं, तो अपन पहले से अपने आप को प्रहलाद की पार्टी में ही सोचते हैं। तो सातवें स्कंद के 7-8 अध्याय में जब हिरण्यकशिपु के विकराल स्वभाव का विस्तृत वर्णन आ रहा है, उसको सुनते सुनते हमको अपने मन में हिरण्यकशिपु के प्रति दया आती है और लगता है नालायक था बेचारा, इतना भी नहीं समझ पाया, कोई उसको ठीक से समझाया क्यों नहीं, हाँ कोई प्रचार क्यों नहीं किया उसको। लेकिन बहुत विरला ऐसा होता है कि हिरण्यकशिपु के इस कथा को सुनकर अपने को लगता है कि अरे मेरे अंदर वो शैतान बैठा हुआ है हिरण्यकशिपु का। तो इसलिए यहां पर 8वें अध्याय में ही यहां पर एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम लोगों के अंदर भी वो भावना है। तो ये 8वें अध्याय का ही अगर आप 12वां श्लोक देखोगे तो ये 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये संपूर्ण नरसिंहदेव और हिरण्यकशिपु की जो लीला थी उसका सार तत्व मूल यहां पर छिपा हुआ है इस 12वें श्लोक में। और यहां पर प्रहलाद महाराज विविध प्रकार से हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु के महानता का प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं, बहुत प्रचार करते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी हिरण्यकशिपु को ये बात उतरती नहीं, उनके हृदय के भीतर ये बात उतरती नहीं। और बारंबार हिरण्यकशिपु यही विचार कर रहे हैं कि मेरी योजना के अनुसार प्रहलाद तो अभी तक समाप्त हो जाना चाहिए था, अभी तक वो जिंदा कैसे, जीवित कैसे है। 14 लोकों में प्रत्येक जीव, प्रत्येक असुर, प्रत्येक देवता मेरी सत्ता को स्वीकार करते हैं, बेहिचक स्वीकृति मुझे मिली है, सभी मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, सब मेरा अभिवादन करते हैं, मेरे हर योजना को वो विनम्रता पूर्वक अपने जीवन में उतारते हैं, कोई कभी मेरे सामने किसी प्रकार का विवाद करने का दुस्साहस नहीं करता, ये प्रहलाद कहां से आ गया। जय श्री राधा माधव जी की। तो हिरण्यकशिपु को अपने अहंकार पर इतना गर्व था, वो अपने अहंकार के भावना में इतना रचा पचा था कि अपने विचारों में मतभेद ये क्या है उसका अनुभव ही नहीं था। अर्थात मैं जो विचार करूं, मैं जो संकल्प करूं, मैं जो योजना बनाऊं वो सफल हो, बस इसी की आदत है, इसी की आदत थी। एक बार हमारे मंदिर में एक परिवार रहते थे, तो उनका एक बच्चा था और वो आकर राधानाथ महाराज को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने लगे और बोले मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं। तो महाराज ने कहा बहुत अच्छी बात है, पिछले एग्जाम में? बोले पिछले एग्जाम में भी फर्स्ट आया, उसके पहले उसमें भी फर्स्ट आया, हर एग्जाम में फर्स्ट आता हूं। तो महाराज ने कहा कभी कभी फेल भी होना चाहिए नहीं तो भ्रम हो जाएगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही महान हूं, जो संकल्प करता हूं वो संकल्प पूर्ण होता है। क्योंकि जीव की आदत होती है कंडीशनड सोल, आदत पड़ने की आदत है। तो इसीलिए जिस प्रकार के हम लोग आदत डालेंगे वैसा भ्रम होगा, वैसा सत्य का दर्शन होगा। तो अहंकारवश प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं ही भोगता हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही महान हूं, मेरे संकल्प के अनुसार ही जगत चल रहा है। मैं हमेशा एक कथा सुनाता हूं, हम लोग का वहां पर एक होटल है, 5-स्टार होटल बंबई में, उसका नाम है होटल प्रेसिडेंट। वहां पर एक रोटी 150 रुपए का मिलता है, इतना रेट अधिक है कि केवल रेट देख के पेट भर जाएगा। तो जिसके पास बहुत मात्रा में धन है वही जाकर अपना वहां पर भोजन करने का प्रयास भी करेगा। तो ठीक उस होटल के सामने एक ठेले वाले ने वड़ा पाव का स्टॉल लगा दिया और ठेले वाले ने अपना नाम दे दिया होटल वाइस प्रेसिडेंट और वो विज्ञापन करता था जो प्रेसिडेंट में ना खा सके यहां खा ले। तो जीव के अंदर स्पर्धात्मक वृद्धि तो पहले से होती है। तो इसलिए यहां पर हिरण्यकशिपु इसके मनोभाव का वर्णन आ रहा है इस श्लोक में। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात स्तंभेन दृश्यते। तो प्रहलाद महाराज ने हर प्रकार से हिरण्यकशिपु को संबोधन करने का प्रयास किया, समाधान करने का प्रयास किया, समझाने बुझाने का प्रयास किया, भगवान श्री विष्णु की महिमा का पूर्ण रूपेण वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन हिरण्यकशिपु का पूरा जो गेट था पूरा बंद था, अंदर कुछ प्रवेश ही नहीं किया। तो अपने समक्ष हिरण्यकशिपु को अपनी महिमा का इतना गर्व था कि मेरी महिमा के सामने अन्य किसी की महिमा का इतना बखान हो रहा है, इतना वर्णन हो रहा है, उसकी शक्ति और सत्ता का इतना जय जयकार हो रहा है, यह सोचकर वो कहते हैं प्रहलाद महाराज को बड़े क्रोधावेश में आकर, यस त्वया मंद भाग्योक्तो, अरे तू कैसा मंद भागी है, तेरा कितना मंद भाग्य है। हाँ, मंद भाग्योक्तो, तुम्हारा कितना परम सौभाग्य है कि तुम मेरे जैसे महान व्यक्ति के पुत्र होते हुए भी मेरी महत्ता को नहीं समझ पाए। मंद भाग्योक्तो, मेरी महिमा का साक्षात दर्शन करते हुए भी इस जगत में अन्य किसी की महिमा का वर्णन कर रहे हो, हाय कितना दुर्भाग्य है तुम्हारा। तो जब हमारे सामने अन्य किसी की महिमा का वर्णन होता है या फिर भगवान की इच्छा अनुसार अन्य किसी व्यक्ति की महिमा को भगवान प्रकट करते हैं और वो इस तरह प्रकट होता है कि हम उसको नकार नहीं सकते, उसको स्वीकार ही करना पड़ता है, तो हमारे मन में भी हो सकता है यही विचार उत्पन्न हो। यस त्वया मंद भाग्योक्तो, लोग स्तुति कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं और अहंकार कहता है अरे कितना मंद भाग्य, उसकी जय जयकार कर रहा है, समझ नहीं रहे मैं कौन हूं। मदन्यो जगदीश्वर, मंद भाग्य क्यों है? हिरण्यकशिपु कह रहे हैं प्रहलाद को, मद अन्यो, मुझको छोड़कर जगदीश्वर अन्य किसी ईश्वर को प्रधानता दे रहे हो। मेरी सत्ता जब 14 लोकों में पूरी तरह जमी हुई है, ये ईश्वर भाव को देखते हुए भी जगदीश्वर अन्य कोई कंट्रोलर यहां हो सकता है क्या इस क्षेत्र में? मुझे छोड़कर मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई व्यक्ति इस स्थान को नियंत्रित कर सकता है क्या? और किसके नियंत्रण की बात कर रहे हो आप? जगदीश्वर, मदन्यो जगदीश्वर। तो ये वास्तव में हमारे चिंता का मूल स्रोत है, मदन्यो जगदीश्वर। मुझको छोड़कर दूसरा कोई ईश्वर पैदा तो नहीं हो रहा, मुझको छोड़कर कोई दूसरा व्यक्ति अपनी श्रेष्ठता को व्यक्त तो नहीं कर रहा, मुझको छोड़कर अन्य कोई महान तो नहीं बन रहा। यह चिंता थी हिरण्यकशिपु की। तो हिरण्यकशिपु 14 लोकों पर विजय प्राप्त करने पर भी चिंतित क्यों थे? इस कारण, मदन्यो जगदीश्वर। तो वो क्षेत्र चाहे सीमित हो या क्षेत्र हिरण्यकशिपु की भांति असीमित हो, 14 लोकों पे व्याप्त हो, लेकिन ये मानसिक चिंता का कारण है कि एक स्पर्धात्मक वृद्धि को लेकर, तुलनात्मक वृद्धि को लेकर अगर हम ये विचार करें कि मुझे छोड़कर मुझसे श्रेष्ठ कोई तो नहीं बन रहा, ये विचार अगर हम करते रहेंगे तो चिंता परछाई की तरह निश्चित पीछे ही चलती रहेगी। जैसे व्यक्ति प्रकाश के सामने आकर अपनी परछाई से दूर नहीं जा सकता, वैसे इस अहंकार युक्त भावनाओं को स्वीकार करके हम चिंता को परछाई की तरह भी दूर नहीं कर सकते। तो मदन्यो जगदीश्वर, तो ये उनका मुख्य चिंता का स्रोत था, मुझे छोड़कर अन्य कोई श्रेष्ठ तो यहां नहीं है। कैसे इस विष्णु की स्तुति कर रहे हो? क्वासौ यदि स सर्वत्र। अच्छा, तुम कहते हो ये विष्णु सर्वत्र विद्यमान है, कस्मात स्तंभे न दृश्यते, तो फिर क्या मैं इसको स्तंभ में नहीं देख सकता हूं क्या? अगर इतना ही महान है, सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, तो क्या स्तंभ में भी विद्यमान है? तो ये प्रश्न पूछने के पहले हिरण्यकशिपु ने अपने मन के अंदर छिपी हुई मूल चिंता को व्यक्त किया। अन्यथा 33 कोटि देवता जिनके सामने झुक रहे हैं, करोड़ों करोड़ों असुर जिनके सामने झुक रहे हैं, सारे ऋषि मुनिगण इत्यादि पुरस्कार लाकर उनके चरणों में प्रकट कर रहे हैं, सब तरफ सब जगह से उनकी केवल स्तुतियां हो रही हैं, एक 5 वर्ष का बालक अगर उनकी बात नहीं मानता और उनके बातों का विरोध करे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये अहंकार तत्व ही ऐसा है कि व्यक्ति को पागल बना देता है, क्योंकि उसके अंदर एक मादक शक्ति है और इस मादक शक्ति के कारण व्यक्ति पूरी तरह भ्रमित हो जाता है, इंटॉक्सिकेट, और इसलिए उसको कुछ समझ में नहीं आता वास्तव में करना है तो क्या करना है। स्वैराचार अब्धि सम्मग्नान जीवान गौरांग्रि पंकजे उद्धृत्य शरणापत्तेर महात्म्यम समबोधयत। तो इसलिए ये वर्णन किया गया है गौड़ीय आचार्यों के द्वारा, स्वैराचार अब्धि सम्मग्नान, प्रत्येक जीव एक स्वैर आचार के सागर में डूब रहा है। स्वैराचार का अर्थ क्या है? स्वतंत्र इच्छा, मैं जो इच्छा करूं वही करूंगा, मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो वही सत्य है, इसको कहते हैं स्वैर आचार। ओशन ऑफ विम्सिकल डिजायर्स, सो वी आर ऑल ड्राउनिंग इन ओशन ऑफ विम्सिकल डिजायर्स। स्वतंत्र इच्छा के सागर में हम लोग डूब रहे हैं। जीवान गौरांग्रि पंकजे, और इन जीवों को ऐसे स्वतंत्रता के सागर से उठाकर श्रीमन महाप्रभु के चरणों में प्रस्तुत करना, उद्धृत्य शरणापत्तेर महात्म्यम, शरणागति की महिमा का वर्णन करके उनको, उन जीवों को उस स्वतंत्रता के सागर से डूबते हुए उठाकर वैष्णवों के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में प्रस्तुत करना, ये गुरुजनों का कर्तव्य है, ये सत्संग की महिमा है। प्रभुपाद जी एक बार मॉर्निंग वॉक पर गए सागर के तट पर, सागर की लहरें चल रही थी, उन सागर की लहरों को देखकर भक्त ने कहा प्रभुपाद को, प्रभुपाद सागर कितना सुंदर लग रहा है, सागर की लहरें कितनी मनोहर लगती हैं। प्रभुपाद ने कहा दूर से, सागर बड़ा सुंदर लगता है कहां से, पास में जाओ पकड़ लेगा, है कि नहीं। और प्रभुपाद ने कहा माया भी ऐसी है, बहुत आकर्षक लगती है कहां से, दूर से। तो इसलिए हम लोग जब जगन्नाथपुरी में यात्रा में गए थे तो बहुत भयंकर बवंडर चल रहा था, सब लोग भक्त लोग स्नान कर रहे थे और राधानाथ महाराज अंदर तक स्नान करते हुए चले गए, बाहर ही नहीं निकल रहे। तो उनका सर्वेंट गया, बोला अरे बाहर नहीं आ रहे क्या बात है, तो उन्होंने कहा सागर की लहरों ने मेरा गमछा ले गया, तो मैं बाहर कैसे आऊं, भक्त लोग सब कैमरा लेके खड़े हैं फोटो वोटो ले रहे हैं। तो उनका सर्वेंट जाके गया, उनको टवल देके आ गया, गमछा दिया, तो फिर बाहर आए, बोले सागर में मैं प्रवेश किया तो गौड़िया सन्यासी था, बाहर निकलता नागा बाबा बन के, क्योंकि सागर की लहरें इतनी शक्तिशाली हैं। तो एक हमारा दूसरा ब्रह्मचारी था, उसको हम लोग मना कर रहे थे अंदर जाने पे, लेकिन फिर भी वो अंदर गया, बहुत दूर गया और पकड़ लिया, सागर की लहरों ने उसको पकड़ लिया और बाहर नहीं निकल पा रहा था, और उसके चेहरे पे खौफ आ गया, हाथ उठाने लगा, हाथ उठाया तो भक्तों को लगा हरि बोल बोल रहा है। फिर किसी ने कहा नहीं नहीं घबराया हुआ लग रहा है, तो नलिया को भेजा, तो नलिया अंदर गया, उसको पकड़ के लेके आया, पेट से पानी निकाला। हाँ, तो फिर सबसे पहले मैंने कहा उसको, भैया ये नलिया ने तुमको बचाया, पैसा तो दो उसको, कुछ तो डोनेशन दो। तो 150 रुपए निकाल के दिए, तो मैंने कहा जान बचाया 150 रुपए दे रहा है, बोले नहीं नहीं राधेश्याम प्रभु ने अपने बुक में लिखा है शरीर का कॉस्ट 150 रुपीज है। गीता कोर्स में लिखा है कि 70% शरीर तो केवल पानी का ही बना है, बाकी सारा हिसाब किताब करके 150 रुपए होता है। मैंने कहा यही यही मौका मिला आपको फिलॉसफी का। तो फिर मैंने उसको कहा इतने लोगों की चेतावनी सुनने पर भी तुम इतना अंदर क्यों गया। वो बोला मैं तो स्विमिंग में उस्ताद हूं, आज तक कभी मुझे समस्या हुई नहीं, क्योंकि जल और मेरा तो बड़ा प्रेम का संबंध है, मैं जब चाहे जहां चाहे बचपन से ही मैं तैर रहा हूं, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा कि पानी में मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए समस्या आती है तो नवसिख्या को नहीं उस्ताद को, पकड़ में कौन आता है, नवसिख्या नहीं उस्ताद, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो पानी उसके केवल घुटने तक आए तो संतुष्ट हो जाता है, और बाकी लोग बोले अंदर जा नहीं नहीं तुम जाओ तुम जाओ, मेरे लिए यही ठीक है इतना बस। वो घबरा घबरा कर जल को स्पर्श करता है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ कौन डुबकी लगाता है, उस्ताद, और फंसता कौन है, उस्ताद। इसलिए जब हम लोग भक्ति में आरंभ के दिनों में प्रवेश करते हैं तो सर झुका हुआ होता है, धीरे धीरे लगने लगता है कि अरे ये तो सत्संग के सागर में तो 20-25 साल से ही मैं तैर रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है, माया के साथ भी दोस्ती हो गई है, ऐसा लगने लगेगा। तो इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि उद्धृत्य शरणापत्तेर महात्म्यम समबोधयत। ये शरणागति क्या है, जब विभीषण छलांग लगाए रामचंद्र जी का आश्रय लेने के लिए तो उनके साथ चार उनके सहयोगी साथ में थे, तो वेदांत देशिका जो कि श्री वैष्णव आचार्य हैं और रामायण पे टीका लिखी है, वो कहते हैं कि ये जो चार उनके साथ असुर थे, जो उनके राक्षस गण थे, जो उनका सहायक बन के आए, बॉडीगार्ड बन के आए, ये शरणागति के चार अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि विभीषण ने अपना सर्वस्व श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित कर रावण के साथ अपने संपूर्ण संबंध को स्खलित करके समाप्त करके प्रभु रामचंद्र जी के ऊपर आस्था रख के छलांग लगाए। जीवन पर्यंत जो उन रावण के साथ संबंध था और जो भविष्य में रावण उनके लिए क्या कुछ कर सकता था इसका विचार पूरी तरह निरस्त करके वो वहां से निकले रामचंद्र जी का आश्रय लेने के लिए। तो ये शरणागति के चार अंग क्या हैं? प्रथम है अकिंचनत्वम। अकिंचनत्वम अर्थात मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं, मैं अकिंचन हूं, मेरी कोई संपत्ति नहीं। दूसरा है अनन्य गतित्वम, मेरे पास कुछ नहीं और आपके चरणों को छोड़कर अन्य कोई मेरी गति नहीं है, दूसरा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, अनन्य गतित्वम। तीसरा है शक्ति, कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं और क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं, चौथा आता है सरलता, भगवान किसी का परिचय नहीं पूछते, चाहे कितना भी व्यक्ति पापी क्यों ना रहा हो भगवान उसका कोई इंटरव्यू नहीं लेते, क्योंकि उनके मन में भय है ही नहीं कि कोई उनका बिगाड़ नहीं सकता। हम लोग किसी को सेवा में लें या नौकरी में लें तो उसके पहले उसके पिछले एम्प्लॉयर का रेफरेंस लेते हैं, फिर इंटरव्यू लेते हैं, फिर 50 प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि किसी के साथ संबंध जोड़ने से पहले मन में संशय होता है कि ये कहीं हमारा कुछ बिगाड़ ना दे। लेकिन भगवान क्या है? सरलता। चाहे व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी उनका विरोधक रहा हो, उनकी बीभत्स रूप से आलोचना किया हो, हर प्रकार से उनके साथ विवाद किया हो, लेकिन चिरकाल तक शत्रुता रखने वाले व्यक्ति को भी तात्कालिक क्षण भर में भगवान स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा कोई इस जगत में मिलेगा नहीं। क्योंकि जिसके साथ जितने समय का वैर होता है उस वैर की अग्नि को शांत होने के लिए समय लगता है और तब जाकर धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर स्वीकृति आती है उस संबंध के विषय में। लेकिन वो भगवान ही है तो चाहे कितने भी करोड़ों करोड़ों जन्मों तक भी कोई विरोधक रहा हो एक क्षण में उसको स्वीकार कर लेंगे। तो इसलिए सुग्रीव मना कर रहे थे रामचंद्र को कि इस विभीषण को स्वीकार मत करो, ये हमारे शत्रु का भाई है। और रामचंद्र विभीषण को बोले कि अरे भैया तुमको क्या लगता है, हां पिशाचान दानवान सर्वान अंगुल्यग्रेण तान सर्वान इच्छन हरिगणेश्वर, अरे आप किस बात की चिंता करते हो सुग्रीव, करोड़ों करोड़ों असुर हो, राक्षस हो, देव हो, यक्ष हो, इत्यादि हो, उन सभी को एक अंगुली के द्वारा मैं सबको समाप्त कर सकता हूं, मेरी इतनी शक्ति है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं सकृत एव प्रपन्नोयम तव अस्मि इति याचे अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। अगर हृदय में यह संकल्प जागृत हो गया कि हां मैं भगवान के चरणों का आश्रय लूंगा, सकृत यदा कदाचित किसी भी प्रकार से, तव अस्मि मैं आपका हूं, ऐसा मन में विचार करके कोई भगवान के चरण कमलों के सामने आकर प्रार्थना समर्पित करे, अभयम सर्वदा तस्मै, भगवान कहते हैं सर्वदा के लिए वो उसको मैं अभयदान देता हूं, ददामि एतद् व्रतम मम, रामचंद्र जी का व्रत है। कृष्ण व्रत लेते हैं तो कभी कभी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन रामचंद्र जी का व्रत पत्थर की लकीर। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये मैं विभीषण को स्वीकार कर रहा हूं और कहते हैं सुग्रीव को कि आप बाहर जाके देखिए, है कि नहीं, सुग्रीव कृपा करके आप बाहर जाकर देखिए कि कहीं विभीषणो वा सुग्रीवो यदि वा रावण स्वयं, अगर बाहर रावण भी खड़ा होगा ना, सुग्रीव अगर बाहर विभीषण के पीछे रावण भी खड़ा होगा उसको भी मैं स्वीकार करूंगा। अगर रावण भी अभी खड़ा होगा और कहेगा कि मैं आपके चरणों में समर्पित होना चाहता हूं, स्वीकार करो, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो इसलिए भगवान केवल उस क्षण का प्रतीक्षा करते हैं कि जब जीव अपने इस अहंकार की भावना को त्याग कर भगवान के चरणों का वो आश्रय ले। यस्तस्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभोर गुरो अत्युदार पदाम्बोज धूल श्याम जन्म जन्मनी। तो ऐसे महात्माओं के चरण कमलों का धूल, चरण कमलों का रज जब हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं तो शनै शनै ऐसी सेवा के भाव से ये अहंकार की भावना समाप्त होती है। तो इसलिए जब हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, हाँ, तो उस समय वो कहते हैं कि मेरे किसी भी स्थान में किसी भी परिस्थिति में मृत्यु न हो, न भूमौ नाम्बरे मृत्युर, न नरेर न मृगैरपि, है कि नहीं, न धरती पर न आकाश में न बाहर न अंदर न दिन में न रात में, हर प्रकार की परिस्थिति में मेरी मृत्यु न हो। अर्थात ये अहंकार को समाप्त करना इतना आसान नहीं, 14 लोकों के किसी भी कोने में भ्रमण करने पर भी ये अहंकार समाप्त नहीं होता, परिस्थिति को परिवर्तन करने से ये अहंकार समाप्त नहीं होता। और हिरण्यकश्यपु इस अहंकार का, इस प्राइड का प्रतीक है कि कुछ समय तक हम इससे भाग सकते हैं, छिप सकते हैं, लेकिन चाहे कितना भी हम लोग प्रयास करेंगे, हम अपने प्रयासों से इस अहंकार को, इस मिथ्या अभिमान को समाप्त नहीं कर सकते। ये अपना भयंकर विकराल मुख बारंबार प्रकट करता रहेगा और हमारे भक्ति के माधुर्य में हर प्रकार से वो मिट्टी मिलाकर रखेगा। और इसीलिए इस अहंकार को नष्ट करने के लिए हमें चाहिए भगवान नरसिंह देव, जो प्रकट होंगे और तब जाकर इस दुर्दम्य अहंकार का नाश कर सकते हैं। इसलिए हम लोग नरसिंह देव के चरणों में हर रोज प्रार्थना करते हैं, नरसिंह आरती गाकर, जिससे कि नरसिंह देव भगवान हमारी सहायता करें, अन्यथा ये अहंकार को वशीभूत करना बद्ध जीव के शक्ति के परे है। तो इसलिए हम लोग महाभारत में भी देखते हैं दुर्योधन ने इतना षड्यंत्र रचा, दुर्योधन अर्थात जो गलत कार्य के लिए जीवन पर्यंत युद्ध करता रहे, है कि नहीं, गलत कार्य के लिए युद्ध करता रहे। कई बार हमारे मंदिर में चौपाटी में इतना भीड़ होता है, एक बार एक दो लोग आए थे मंदिर में दर्शन के लिए, राधाष्टमी था, इतनी भीड़ थी, वो आकर मेरे से मिले, बोले यार आप लोगों के मंदिर के भीड़ का कुछ समझ में नहीं आता। मैं बोला क्या हो गया, बोले हम लोग दर्शन के लिए मंदिर आए, एक लाइन देखा, खड़े हो गए, मालूम पड़ा प्रसाद का लाइन था, हाथ में प्लेट मिल गया। तो हमने कहा प्लेट नहीं चाहिए, बोले अब यहां तक पहुंच गए, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, प्लेट लेके ही निकलना पड़ेगा। तो कोई मंदिर में ऐसा नहीं हो कि पहले प्रसाद खाना पड़ा, फिर प्रसाद खा के हाथ धो के फिर हम लोग ढूंढने लगे, एक और लाइन देखा, खड़े हुए, मालूम पड़ा चप्पल जूता का लाइन था। अरे भगवान कहां है यहां पर, मंदिर कहां है? हम बोले ठीक है फर्स्ट फ्लोर पे है, ऐसे जाने नहीं मिलेगा, सब तरफ सेनाएं लगी हुई है। तो उनको फिर लेके हम ऊपर गए। तो कई बार हो सकता है जीवन भर हम लोग कोई लाइन में लगे रहेंगे और मृत्यु के समय मालूम पड़ा गलत लाइन थी, सोचो क्या होगा, है कि नहीं। और भारत में तो अपने को आदत ही है गलत लाइन में खड़े होने की कई बार। तो इसीलिए एक तो हम लोग समझ गए कि हाँ भाई, इस भौतिक जगत के विषयों से मुक्त होकर हमें सत्संग में आना है, और सत्संग के लाइन में आ गए। लेकिन सत्संग में आने के बाद भी हमारी इच्छाओं को शुद्ध रखना समय के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, और बारंबार हमें मूल्यांकन करना है, आंतरिकरण करना है कि कहीं हम गलत लाइन में तो नहीं खड़े भक्ति के क्षेत्र में भी। तो इसलिए दुर्योधन, उनके सामने भगवान ने इतने प्रस्ताव रखे, इतने आकर्षक प्रस्ताव रखे, स्वीकार नहीं किया। और जाके सहदेव को बोलते हैं वो दुर्योधन कि तुम ज्योतिषी हो, है ना, तुम जानते हो ना सहदेव, है नकुल सहदेव में, सहदेव बहुत बड़े ज्योतिषी थे, आप कोई ऐसी युक्ति सुझाओ कि हम लोग जीत जाएं। तो सहदेव बोलते हैं कि एक कालबलि यज्ञ होता है, वो कालबलि यज्ञ आप करोगे अमावस के दिन, तो फिर जो भी कालबलि यज्ञ करेगा उसको कोई हरा नहीं सकता। तो दुर्योधन बोले अरे धन्यवाद धन्यवाद सहदेव, जीते रहो, क्या आइडिया दिया है। तो सहदेव भी इतने सरल थे कि जो पूछा बता दिया। अब भगवान कृष्ण को लगी चिंता, क्योंकि भगवान का आधा टाइम जाता था पांडवों की गलतियों को एडजस्ट करने। तो भगवान तुरंत आ गए और नदी के किनारे बैठकर सभी ब्राह्मणों को बुलाकर तुरंत यज्ञ आरंभ कर दिए, वो अपना पितरों का तर्पण आरंभ कर दिए। तो पितरों को जब तर्पण आरंभ किए, ब्राह्मण लोग भी कंफ्यूज हो गए, आपस में चर्चा करने लगे, रे भगवान को मालूम नहीं कि अमावस कल है, आज नहीं है, अमावस तो कल है, आज क्यों कर रहे हैं पितरों का तर्पण। लेकिन भगवान सब पंडितों को लेके लगे हुए हैं, पंडित लोग भी बोले अरे भगवान करे तो होगा कुछ कारण, दक्षिणा भी मिलेगी, लग जाते हैं। तो सब लोग लग गए, और ऊपर जो चंद्रमा है और सूर्य देव है वो आपस में चर्चा करने लगे। सूर्य ने चंद्र को पूछा, अरे भैया अमावस कब है? चंद्र बोले मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कल है, तो भगवान आज क्यों कर रहे हैं? सब गलती करते, हो सकता है उनके मन में भी कुछ कंफ्यूजन आ गया हो, हम लोग का कर्तव्य बनता है उनको समझाना। तो सूर्य और चंद्र दोनों आ गए, सूर्य चंद्र भगवान के पास आके बोले, प्रभो अमावस तो कल है, आज क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा अमावस मतलब क्या, जब चंद्र और सूर्य एक लाइन में आ जाए वही होता है अमावस, आज हो गया ये। यही हो गया अमावस और क्या है। तो तुरंत वो लोग भी स्वीकार किए, भगवान ने पांडवों को बुलाया, कालबल यज्ञ वहीं करवा दिया, और फिर दुर्योधन पंजिका के हिसाब से अगले दिन किए, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा से ऑलरेडी अमावस एडजस्ट कर दिया था। तो इसलिए चाहे कोई भी शैतान असुर कितने भी अपनी योजना अनुसार प्रयास करे, लेकिन भगवान की अगर इच्छा हो तो हर योजना को पराजित कर दे, निरस्त कर दे। इसलिए यहां पर हिरण्यकश्यपु अपने इतने भयंकर अहंकार को लेकर, यस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि से सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि प्रहलाद मुझे महान क्यों स्वीकार नहीं कर रहे, मुझसे श्रेष्ठ अन्य किसी का यहां पे गुणगान क्यों हो रहा है। और ये उनकी चिंता का मूल कारण था, और अगर ये हमारी चिंता का मूल कारण है तो समझना चाहिए कि हिरण्यकशिपु का काफी प्रभाव हमारे अंदर अभी भी है, और इसीलिए हमको नरसिंह देव के चरणों में निस्सहाय भाव में प्रार्थना करनी है, आश्रय लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप सभी भक्तों को वैष्णवों को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हम लोग का एक मीटिंग चालू हो रहा है 9 बजे, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्ण।